अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़िक्रो नज़र और मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन महदी। आज के प्रोग्राम में हम दो मौज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। नंबर एक, इंटर फेथ मैरिजेज, या जिसे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों की आपस में शादियां भी कहा जा सकता है। और हमारे प्रोग्राम का दूसरा मौज़ू होगा इंटर फैमिली मैरिजेज, या ख़ानदान में शादियाँ। ख़वातीन हज़रात, हम अपनी गुफ्तगू का जो फोकस है वो ज़्यादातर बरतानिया और मगरबी ममालिक में रहने वाले मुसलमानों के हवाले से होगा, क्योंकि इन ममालिक में रहने वाले अफराद या मुसलमानों को इन मसाइल का नस्बता ज़्यादा सामना करना पड़ता है बनिस्बत उन मुसलमानों के जो इस्लामी ममालिक में क्याम पजीर हैं। मेहमानों का तारुफ करवाना चाहूँगा। मेरे साथ इन दोनों मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं मौलाना हसन मारूफी। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
और मेरी दूसरी मेहमान है सैयदा सना फातिमा। सना जो है वो अल महदी होज़ा बर्मिंगम से फारिगुल तहसील होने के बाद एज ए कम्युनिटी मेंबर जो है वो वर्क करती हैं। अस्सलाम वालेकुम सना।
वालेकुम अस्सलाम।
खुश आमदेद कहूँगा दोनों मेहमानों को।
शुक्रिया
मौलाना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। पहले हम बात कर लेंगे इंटरफेथ मैरिजेस, यानी मुसलमानों की किसी दूसरे अहले किताब के साथ शादी, क्योंकि यूके में रहते हुए और दीगर मगरबी ममालिक में मुसलमानों के पास कम ऑप्शंस होती हैं बनिस्बत अगर आप मुस्लिम अक्सरियत ममालिक में रह रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इसके पस मंज़र के हवाले से कि किन हालात में इस्लाम इजाज़त देता है और इसके माशरे पर क्या असरात पड़ सकते हैं।
जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये बहुत ही अहम और वक्त के तकाजे के मुताबिक मौजू है। मैं अगर बिल्कुल सरसरी तौर पर फौरन ही जवाब देने लगूँ तो शायद जुल्म होगा मौजू पर। हमें सबसे पहले ये भी जानना चाहिए कि मुसलमान कहना और मुख्तलिफ मजाहिब व मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान कहना ये ज़रूरत है, इसलिए कि इख्तलाफ मसाइल मसलकों के इख्तलाफ के साथ पैदा हो जाता है। जितने मसालिक हैं उन मसालिक के एतबार से मसाला और मसलों का जवाब भी अलग अलग होगा।
सही।
चूँकि हम जहाँ बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे हैं, दुनिया में कोई भी मुसलमान देख सकता है, अगर मैं एक बात कह दूँ तो किसी को भी एतराज़ हो सकता है, या मसलन हो सकता है कि मेरी बात को सुन करके वो उस बात को सही समझे कि एक आलिम दीन ने बात कही है, और मुमकिन है उसके मसलक के एतबार से वो सही ना हो। तो ज़रूरत है थोड़े बहुत तौज़ीहात की कि उसको जाने भी। यकीनन जहाँ तक इंसान ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा हो और वो अपनी तालीम की खातिर या तालीम याफ्ता होने के बाद अपने नौकरी की खातिर या अपने फैमिली के मुस्तकबिल की खातिर जो है किसी दूसरे मुल्क चला गया, खुसूसन जो कि आपने मौजू रखा मगरबी ममालिक में कहीं चला गया है और वहाँ मुमकिन है अपनी फैमिली को बसा लिया, अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, तो बच्चे बड़े हो जाने के बाद वो क्या पीछे देखें अपनी तरफ आकर के शादी ब्याह के लिए, या ये कि वहीं कहीं शादी ब्याह करें। मसाइल अच्छे खासे पैदा हो चुके हैं और हैं। चूंकि मसलकी तालीमात का सिलसिला बहुत कम रह गया है, दुनियावी तालीमात ज़्यादा हैं, लिहाजा जैसे माशरे में रह रहा होता बड़ी सादगी से ये सोच लेता है कि ठीक इसी माशरे में रहना, तो उसी माशरे में रहते हुए हमें ये सारी चीज़ें भी करना होंगी। यकीनन मैं जिस तफसील से बात करूँगा शायद जो है ज़्यादा तफसील हो जाएगी, मुझे बीच में टोक दीजिएगा। सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि हकीकत में एक रुझान भी पैदा हो गया है वहदत अदियान का, कि कहाँ कहाँ दीन को और मजाहिब को और मसालिक को लेकर के हम फिरते रहेंगे। सभी मजहब और मसलक और दीन जो हैं सबका रुख एक तरफ होता है, लिहाजा इस थोड़े बहुत जो है इख्तलाफात को लेकर के कहाँ आदमी जो बैठा रहेगा कि ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द अपनी बात को ख़त्म करते सिर्फ इतनी बात
सही
कहूँगा,
सही
खाली इतनी बात जो जवाब हो आपका कि करना क्या चाहिए और इस्लाम क्या कहता है। चूंकि हम लोग एक मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं जिसे मकतब इमामिया कहें, मसलक जाफरी कहें, मजहब जाफरी कहें, ये इस उन्वान से पहचाना जाता है। इसमें बड़ी आसानी है कि बजाय इसके कि हर आदमी अपनी नज़र दे, चूंकि दीन में दो हिस्से हैं, एक अकीदे का और एक अमल का,
सही
मानने की बात और करने की बात। अकायद में तो आदमी नज़र दे सकता है और अपने नज़र के मुताबिक जो है आदमी को अपने इस्तदलाल से बात को मानना, लेकिन जहाँ तक अमल का ताल्लुक़ है उसमें हर एक को अपने नज़रिए का इजहार करने का हक़ नहीं होता है कि वो अपनी बात कहे। इसमें इज्तिहाद व तकलीद का एक निज़ाम पाया जाता है, किसी भी जगह के एतबार से भी, किसी फ़र्द और ख़ानदान के एतबार से भी। मौजू बदल जाता है, जब मौजू बदल जाता है तो उसका हुक्म भी बदलता है। आज की तरक्की याफ्ता दुनिया में ज़रूरत है कि अपने वो मसाइल और मौजूआत को समझें, कोई मुश्किल नहीं होती है। जो आलम है, जो ज़्यादा जानने वाला है, जिसको हम मुश्तहिद कहते हैं, जिसके हम मुकल्लद कहते हैं, जिसको हम मुश्तहिद जानो शरायत कहते हैं, उसकी तरफ रुजू करें, अपनी बात को कहे कि मैं इस जगह रह रहा हूँ, मेरा मसला ये है, मैं ये हूँ और मैं इज्तवाज या शादी करना चाहता हूँ फलां से, क्या मेरे लिए इम्कान शरीय एतबार से है या नहीं। अगर मैं यहाँ बैठ करके किसी बात को कह दूँ तो वो सही नहीं होगा, इसलिए कि मेरी कोई तकलीद नहीं करता है यकीनन, और ना मैं काबिल तकलीद हूँ कि मैं कहूँ कि मुश्तहिद हूँ। मैं किसी के फतवे को नकल कर सकता हूँ, किसी की बात को नकल कर सकता हूँ, हुक्म नहीं दे सकता हूँ कि ये है, इसलिए कि दीन को बारीकियों के साथ जानने वाले वो हैं। लिहाजा मैं बता सकता हूँ कि जिसके ये मसले पैदा होते हैं, ये मसाइल आते ज़रूर हैं, इन सारे मसाइल में ज़रूरत है फौरी तौर पर कि वो अपने मर्जा की तरफ, आलम की तरफ, मुकल्लद की तरफ, मुश्तहिद जामे शरायत की तरफ रुजू करें, हतमी और वाकई फैसला उसको मिल जाएगा, वही दीन का हो।
सही, मैं मौलाना साहब आपकी तरफ वापस आऊँगा और मैं चाहूँगा कि जो एक तो जो बड़े बड़े मुज्तहिदीन हैं हमारे सामने, जिनमें आयतुल्ला सिस्तानी और आयतुल्ला अली खामेनाई, उनके अगर फतवों पे आप रोशनी डाल दीजिएगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि मैं आपकी तरफ वापस आऊँ, मैं चाहूँगा कि सना को जो है वो गुफ्तगू में शामिल किया जाए। सना, आपने यहाँ पे रहते हुए तालीम हासिल की और काफ़ी अरसे से आप यहाँ पे क्याम पजीर भी हैं, क्या आपके सामने कुछ ऐसी मिसालें हैं इंटरफेथ मैरिज, या किसी मुसलमान ने गैर मुस्लिम या अहले किताब से शादी की हो और उसके माशरे पे क्या असरात है? क्योंकि अगर मैं सोचूं कि जो बच्चे हैं ऐसे कपल्स के, उनके लिए तो एक मुश्किल हो जाएगा कि वो किसके मसब को फॉलो करें। और उससे पहले ये भी बात हम मौलाना साहब से बाद में डिस्कस करेंगे कि जो है वो मजहब भी तब्दील करना ज़रूरी होता है, या एक आम ख्याल ये है कि अगर आपने अहले किताब से शादी कर ली है तो वो जायज़ है। मैं इससे पहले कि मौलाना साहब की तरफ आऊँ, क्या कहेंगे आप?
जी ज़रूर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका इनवाइट करने के लिए। नाज़रीन, टॉपिक जिस तरह से आपको बहुत अच्छे तरीके से मौलाना साहब ने भी डिफ़ाइन कर दिया है कि इंटरफेथ और इंटर फैमिली मैरिजेस के हवाले से, और जहाँ तक बात आती है मतलब यूके में रहते हुए जिस तरह आपने भी सवाल किया, तो वाकई इस माशरे में काफ़ी ऐसी हमारे सामने मिसालें आती हैं कि जिसमें वही बात के किसी मुसलमान ने किताब से एक से शादी कर ली। बहुत से लोग इसकी मुखालफत भी करते हैं, बहुत से लोग जो है वो इसका वो कहते हैं कि मतलब ठीक है, ये एक तरीका अपने आप को एटलीस्ट मतलब सेफ रखने के लिए, क्योंकि आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, बुराई नहीं कर रहे, तो आप इस तरीके से उसको वो कर सकते हैं। और दूसरी बात वही आती है कि इस्लाम, चूंकि वही बात है कि हमें इस चीज़ की जिस चीज़ की इजाज़त देता है उस लिमिट्स में रहते हुए अगर आप कुछ इस तरह से मतलब कर रहे हैं तो इसमें ऑब्वियसली कोई बुराई नहीं है। ऐसी मिसालें तो चूंकि मेरे साथ बहुत सी ऐसी जो थे कन्वर्ट्स मुस्लिम हैं, जो मुझे इस्लाम के इस्लाम पे कन्वर्ट हुए, उस तरह की मेरी बहुत सी फ्रेंड्स थी, उन्होंने मतलब शादियां कुछ मतलब इस्लाम, क्योंकि उनको उनकी चीज़ें पसंद आई, उनके जो लॉज हैं वो उनको अच्छे लगे और वो कन्वर्ट हुई, तो उन्होंने मतलब शादियां की, कुछ जो है वो नहीं भी हुई मतलब वो अपने रिलीजन पे ही ले। लेकिन मेरी एक फ्रेंड है इस तरह, वो रोमेनियन थी, और उसकी जो शादी हुई वो मुसलमान से उसने शादी की, लेकिन उस टाइम पे वो कन्वर्ट नहीं हुई थी, वो मतलब अपने रिलीजन पे ही थी, लेकिन चूंकि वो क्रिश्चियन थी, अहले किताब थी, तो आप इस्लाम भी इसकी इजाज़त देता है, तो उनकी शादी हुई। फिर उसके बाद उससे मेरी मतलब बात होती थी, तो वो कहती थी कि मतलब मैंने देखा अपने हस्बैंड को, जिस तरह द वे हाउ ही रीड्स नमाज, द वे ही हिज कनेक्शन विद गॉड, तो इन चीज़ों को देख के कहती हैं कि मैं इंस्पायर हुई, फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता स्टडी की, देखा, और फिर वो बाद में कन्वर्ट हुई।
सही सही
तो ये मतलब एक क्या कह सकते हैं कि इस यूरोप में
सही
रहते हुए एक उसके लिए मिसाल बनी कि उसने हस्बैंड को देख के वो इस्लाम की तरफ आई, कन्वर्ट हुई, और नाउ माशाल्लाह शी इज़ अ वेरी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम।
अच्छा अच्छा सही। तो बात वहीं आ जाती है कि अगर प्रैक्टिस, अगर आप अमल करके कोई
अमल
चीज़ दिखाएं,
करके
उसका
दिखाए,
ज़्यादा
एग्जैक्टली
असर होता है
असर होता है
बनिस्बत बातों के।
बातों के, या एग्जैक्टली
मौलाना साहब, इससे पहले कि मैं चाहूं कि आप जो हमारे मुज्तहिदीन हैं उनके फतवों पे थोड़ी सी रोशनी डालिए कि किन हालात में इस्लाम जो है वो इजाज़त देता है। जैसे अभी सना ने जिक्र किया अपनी फ्रेंड का, जिन्होंने पहले क्रिश्चियन थी, मुसलमान से शादी की, बाद में फिर वो कन्वर्ट हो गए। तो क्या इस्लाम जो है वो इजाज़त देता है कि आप अहले किताब से शादी कर सकते हैं, या जो मेरे जहन में सवाल आ रहा है वो ये कि या उनको पहले अपना रिलीजन जो है वो इस्लाम कन्वर्ट करना है शादी से पहले, तब आप शादी कर सकते हैं।
जी, ये भी तजिए के लायक है। मैं चाहता हूं कि असल बात लोगों तक पहुंचे। शादी एक मकसद के लिए होती है। अगर इंसान के जहन में शादी का मकसद है तो शायद उसको सवाल करने का मौका ही ना मिले, वो खुद तय कर लेगा कि आया मैं किस लिए शादी कर रहा हूं। अगर वाकन एक नस्ल है, वाकन एक आइंदा के लिए कुछ वाकन चाहता है, तो यकीनी मानों में वो खुद जो है इसकी तहकीक में खुद चाहेगा। वो जानता आज की दुनिया में कि असरात जो मुरतब होते हैं आने वाली नस्ल में, वो एक विरासती असरात भी होते हैं और एक माहौली असरात भी होते हैं, और इन्हीं दोनों असरात की बुनियाद पर एक नस्ल सामने दिखाई देती है। खानदान के असरात, नस्ल के असरात, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आजकल जेनेटिकल जितनी साइंस है इस सारी चीज़ को प्रूफ कर सकती है कि यकीनन है कि असरात मुरतब होते हैं। हत्ता कि इंसान के कुछ असरात वो होते हैं जो नाकाबिले तब्दील होते हैं, और कुछ जो हैं काबिले तब्दील भी हो सकते हैं, नज़रियात के, ख्यालात के, आमाल के, जो कि इंसान उसको तब्दील कर सकता है तालीमात की वजह से, अफकार को बदल करके। और ऐसे ही जैसे माहौल में रह रहा, उस माहौल की बुनियाद पर भी असरात मुरतब होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि खानदानी असरात गालिब आ जाते हैं माहौल के असरात पर, और कभी इसके उल्टे हो जाता है कि खानदानी असरात दब के रह जाया करते हैं, माहौल के असरात जो हैं सामने नुमायाँ हो जाया करते हैं। तो पहली ये बात कि जो आदमी शादी करना चाहेगा, हम उस तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि पहले वो सोचे कि शादी किस मकसद के लिए कर रहा है। वो मकसद इंसान के कभी बिल्कुल सामने का होता है, जो मकसद नहीं होता है उसकी तकमील खाली चाहता है कि ये चीज़ मेरा जी चाहता है, तमन्ना, आरजू, ख्वाहिश, जज्बात सामने को, तो और उसके लिए कर रहा होता है, मकसद असलन होता ही नहीं है। उसके लिए समझाने की ज़रूरत है और समझने की भी ज़रूरत है कि ये बहुत ही वक्ती चीज़ होती है, और इस तरह की बात होती है तो वैसे इंसान की ज़िंदगी आगे चलती नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा मसाइल उसके ज़िंदगी में आ जाते हैं। और जब आदमी एक मकसद के लिए तय करता है, तो उस मकसद के लिए खुद अपने शरीक हयात को भी, अपनी शरीक हयात के बारे में भी अपने उस नज़र को रखता है और उस नज़रिए को रखता है, उस ख्याल को रखता है। जब वो दोनों हम ख्याल हो जाते हैं, तो हम ख्याल हो जाने के बाद नतायज जो हैं बड़े अच्छे हुआ करते हैं। मुसलसल आप बोल रहे हैं कि यकीनन अगर उन चीज़ों को नहीं पेश नज़र रखेगा, तो आइंदा आने वाली नस्ल को एक ऐसी जगह छोड़ करके जाएगा जो अपने बारे में कुछ फैसला कर नहीं पाएंगे, या एक तीसरी चीज़ हो जाएंगे,
सही
न उधर के न उधर के, जो इस मसाइल के हैं। रहा इस्लाम का नज़रिया, तो मैं फिर उस सिलसिले में कहना चाहूँगा।
अगर
जी
मुझे इजाज़त दें मौलाना साहब,
बिस्मिल्लाह।
यहाँ पे एक वक्फा ले लें,
जी बिस्मिल्लाह।
वक्फे के बाद गुफ्तगू को हम यहीं से जारी रखेंगे।
शुक्रिया।
यहाँ पे लेंगे एक वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदेद। वक्फे पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी मौलाना हसन मारूफी साहब से कि फतवे जो हैं वो मुज्तहिदीन की तरफ से क्या मौजूद हैं, ताकि जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको ये पता लग जाए कि शादी जो है वो आप अहले किताब से कर सकते हैं और किन हालात में कर सकते हैं। जी मौलाना साहब।
जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि यकीनन हमारे यहाँ कुछ लफ्ज़ें बोली जाती हैं और हर ज़बान में जब भी कोई लफ्ज़ बोला तो उसका एक माना फौरन ज़हन में आता है, वो एक हकीकत होती है, लेकिन कहीं कहीं उसकी ज़रूरत होती है कि तौज़ीह की जाए। जो फौरन माना ज़हन में आता है उसको हम अपनी इस्तलाही ज़बान में कहते हैं तबादुर। एक लफ्ज़ बोलते ही जो है फौरन माना ज़हन में आए और वही हकीकत होता है। हम शादी बोलते हैं, लफ्ज़ शादी, तो शादी से माना समझ जैसे आदमी माँ बाप अपने बच्चे की शादी कर रहे होते हैं ज़िंदगी भर के लिए, वो होती है। लेकिन मसलक और मज़हब के एतबार से शादियों के भी किस्में हैं। उसमें एक शादी जिसको दायमी कहा जाता है और एक मुअक्कत कहा जाता है। उसके लिए इस्तलाहें भी, लफ्ज़ें भी हैं, मौजू आएंगे उसको बोलेंगे। इस एतबार से ज़रूरत है इस बात की भी वजाहत हो कि मराजे यानी जिसकी तकलीद की जाती है उनका नज़रिया या मजहब, ज़ाहिर मजहब और मसलक का नज़रिया वही बयान करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। इसमें भी थोड़ा बहुत जुज़ी तौर पर इख्तलाफ पाया जाता है, इसलिए ज़रूरत यहाँ पर डायरेक्ट कहना गलत होगा कि हम डायरेक्ट यहाँ ये कर सकते हैं और वो नहीं कर सकते हैं। सकता है कि मुवक्कत और वक्ती तौर से जो शादी हो रही है उसके लिए सिर्फ जो है अहले किताब होने को काफ़ी समझते हो, लेकिन जो वाकई एक मकसद के लिए शादी कर रहा और दायमी कर रहा और अपने लिए शरीक हयात चुन रहा है उसके लिए ज़रूरी नहीं को कहें कि चूंकि अहले किताब हैं लिहाजा काफ़ी है, बल्कि उसके लिए चूंकि मकसद उसमें एक नस्ल है, मकसद उसमें एक अपने आना, इसलिए ज़रूरत है अफकारों नज़रियात के भी अपने हम आहंगी का। लिहाजा मैं कोई न किसी का न अपना नज़रिया नहीं। आसान तरीन रास्ता ये होता है कि आदमी जैसे अपने पूरी ज़िंदगी में मरबूत होता है किसी न किसी चीज़ से कि अगर वो घर बना रहा है तो जानेगा कि कौन भाई बेहतर नक्शा बनाता है, डॉक्टर की जा रहा है तो कौन अच्छा डॉक्टर है, वैसे ही अपने मजहबियात में भी आलम को तलाश करें और उसकी तकलीद में आए और उससे मजहब के अहकाम को पूछें। इसमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई अजियत नहीं, हर चीज़ जो है फौरन मालूम हो जाता है। मैं यहाँ से नज़र या नज़रिया नहीं बयान करूँगा, यही कहूँगा کہ وہ اپنے عالم کو جانے اور اس سے پوچھ لے.
صحیح. یعنی کہ جو آپ کی گفتگو سے جو میں نے آخذ کیا وہ یہ ہے کہ وہ افراد جن کو اس قسم کا مسئلہ درپیش ہے وہ اپنے مراجع تقلید سے جو ہیں وہ رجوع کریں. اور میرے خیال میں ویب سائٹس بھی موجود ہیں آج کل, تو آپ کوشچن ڈالتے ہیں تو آپ کو 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو جواب آ جاتا ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے اس میں یہ فرق بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ عارضی شادی ہے یا دائمی شادی ہے. وہ ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے, لیکن اپنے اگلے پروگرام میں اس پر بات کریں گے. ثنا, میں چاہوں گا کہ یہاں پر آپ سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں, کیونکہ ہمیں دوسرا جو ہے موضوع اس پر بھی بات کرنی ہے. خاندان میں جو شادی ہیں وہ بھی ایک یہاں پہ ایشو ہے, اس کے حوالے سے بھی کافی لوگوں کے درمیان جو ہے وہ شکوک و شبہات ہیں اور کچھ کوشچن بھی ہیں. لیکن اس حوالے سے آخری سوال کہ کیونکہ دیکھیے جب ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں یہاں ہم اقلیت میں ہیں مسلمان, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جب نوجوان لڑکے لڑکیاں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں یا تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں تو وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد وہی تقریباً عمر ہوتی ہے شادی کی. جیسے آپ فارغ ہوئے تو 22-23-24 سال, جابز بھی یہاں پہ نوکری ڈھونڈنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا دیگر ممالک میں ہوتا ہے. یہاں نوکری بھی مل جاتی ہے آپ کی, تعلیم چاہے جس طرح کی بھی ہو. تو پھر شادی جو ہے وہ آپ کی ایک جو ہے وہ ضرورتوں میں سے ایک انتہائی بنیادی ضرورت
ہے. جی.
تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کے حوالے سے اس طرح کی جو گنجائش موجود ہے جہاں پر وہ جو ہے اپنے والدین سے کھل کے اظہار کر سکیں کہ جی ہم نے ادھر شادی کرنی ہے, یا اس میں معاشرتی جو رکاوٹیں ہیں وہ آڑے آ جاتی ہیں؟
جی, جیسا کہ ابھی مولانا صاحب نے بہت خوبصورتی سے مطلب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بتایا کہ, اور دوسری بات جو انہوں نے کی کہ ہر معاشرے میں جہاں پہ آپ رہتے ہیں آپ کو اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے. چونکہ ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں مغربی حوالے سے, مغربی معاشرے میں, تو یہاں پہ ہماری وہ کہتے ہیں ہم لوگ تو چونکہ پاکستان انڈیا سے آئے ہیں ہماری اور بات ہے, لیکن جو یہاں کے براٹ اپ ہیں ان کی جو تھنکنگ ہے وہ ڈفرینٹ ہے ہمارے طرح سے, وہ نہیں سوچتے جیسے مطلب ہم لوگ معاشرے کا زیادہ سوچتے ہیں کہ سوسائٹی کیا کہے گی, معاشرہ کیا کہے گا. بٹ جو ادھر کے بچے ہیں جو کہتے ہیں ایک طرح سے وہ ان کو ذہنی آزادی ہے, وہ ہر چیز اپنے ماں باپ سے اوپنلی کہہ سکتے ہیں. تو یہ مطلب اس اگر ہم اس چیز کو دیکھیں اور پھر یہ جو انٹر فیتھ میرجز اور فیملی میرجز کی بات آ جاتی ہے, تو وہی بات میں کہوں گی کہ یہاں کے بچے اوپنلی اپنے ماں باپ سے ایون جو ہے وہ ہر بات کر سکتے ہیں اور اس میں اس چیز کو بھی وہ لے جا سکتے ہیں. اور چونکہ یہاں کے ماں باپ بھی انہیں پتا ہے کہ جیسے مطلب ہم لوگ اقلیت میں, جس نے آپ نے خود بھی بتایا کہ تھوڑے لوگ یہاں پر ہیں, زیادہ ہماری فیملیز بیک ہوم ہے پاکستان انڈیا وغیرہ میں, تو یہاں پہ یہ مسئلہ زیادہ ہے چونکہ مطلب فیملیز کے کچھ لوگ یہاں پر ہیں, باقی جو ہمارے ہیں وہ بیک ہوم ہیں.
صحیح.
تو یہاں پر یہ جو ہے اس لیے لوگ زیادہ باہر جو ہے فیملی سے باہر دوسری فیملیز میں شادی کرنا. اور دوسری بات ایک چیز یہ بھی ہے کہ مطلب زیادہ چھوٹی ایج میں لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بچوں کی شادیاں ہو جائیں, کیونکہ وہی بات ہے کہ معاشرے کو مطلب فساد سے برائیوں سے بچانے کے لیے, چونکہ
اس میں
سب کچھ اوپن لیا.
معاف کیجیے گا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, بار بار جب آپ یہ کہہ رہی ہیں چھوٹی عمر میں شادی, اس سے ایک اور معاشرتی مسئلہ جو یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ مین میڈیا جو ہے اس میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, فورسڈ میرجز کا, زبردستی شادیوں کا. اس میں جو ہے وہ ایشین کمیونٹی جو ہے اس کے حوالے سے تو بہت زیادہ جو ہے وہ اعداد و شمار بھی پیش کیے جاتے ہیں, لیکن وہ ایک علیحدہ موضوع ہے, اس پر ہم کسی اور پروگرام میں جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے. لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے مولانا صاحب کہ ہمارے پروگرام کا وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے, اور جو ہمارے موضوع ہیں وہ اتنی ان کے اندر جو ہے وہ گنجائش موجود ہے کہ مزید سوالات پہ سوالات بھی کیے جا سکتے ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ اب ہم اگلا جو ٹاپک تھا ہمارا, جو موضوع ہے فیملی, خاندان میں شادیوں کے حوالے سے, کیونکہ جہاں یہاں مغربی ممالک میں اقلیت میں رہتے ہوئے ہمیں اس چیز کا مسئلہ درپیش ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ینگ ایج میں مسلمان لڑکے کو مسلمان لڑکی ہی ملے, ہو سکتا ہے کسی اور سے شادی کرنی پڑ جائے, مجبوری ہے. تو بہرحال جیسے آپ نے کہا کہ مراجع تقلید سے آپ رابطہ کریں وہاں سے آپ کو, اور اس کے لیے کئی مراکز بھی یہاں پہ موجود ہیں. خاندان میں شادیاں, ایک تو میں چاہوں گا کہ اسلامی نقطہ نظر سے آپ بتائیے کہ کیا اس میں کوئی کباہت ہے یا بالکل اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے.
جی بہت اہم موضوع ہے یہ، اور چونکہ میرے سوچنے کا ایک طریقہ ہے، چونکہ حالات کو اور معاشرے کو دیکھتے ہیں کہ خود معاشرہ اور حالات کس طریقے سے بن رہے ہیں اور کس طریقے سے لوگ سوچتے ہیں، چونکہ ہم سائنسی دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اور جتنی یقین کے ساتھ سائنس کی باتوں کو تسلیم کر لیا جاتا ہے شاید کسی چیز کو اتنے یقین کے ساتھ اور آسانی سے آدمی تسلیم نہیں کرے گا۔ ہم نے خود نہیں پڑھا ہے سائنس کو، یا کسی بات کے بارے میں جو کہی جا رہی ہے، نتیجے کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے، خالی حوالہ دے دیا جائے کہ سائنسی اعتبار سے یہ بات ثابت ہے، تو اس چیز کو تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ میں فقہی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے اتنی بات کہہ سکتا ہوں کہ خاندان میں شادیاں صرف ایک فرق کو کہا گیا ہے کہ خونی رشتہ، خون کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے ہے، پھر ورنہ شادی آدمی کر سکتا ہے خاندان میں۔ اگر خون کا رشتہ بھائی بہن جس طریقے سے ہوتا ہے اس میں نہیں ہو سکتا ہے، ایک مخصوص طبقات بتا دیے گئے ہیں، اس میں آپس میں شادی نہیں ہو سکتی، باقی خاندان میں آدمی شادی کر سکتا ہے۔ اب اگر صرف اپنی بات تھوڑی سی وضاحت کر دوں، اور ایک نا آپ کا سوال کیا رہا، یہ کہ سائنسی اعتبار سے کیا چیز ثابت ہو گئی ہے کہ اگر خاندان ہی میں آدمی شادی کرتا رہے گا تو آنے والی نسل میں اس طرح کے عیب پائے جا سکتے ہیں؟ تو مذہب نے کہیں منع نہیں کیا ہے کہ آدمی اپنے خاندان ہی میں شادی کرے گا، باہر نہیں جا سکتا ہے۔ اگر یہ سوال اس وقت ہونا چاہیے جب مذہب نے پابند کر دیا ہو کہ ایسا ہو، اور عملی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا جائے تو آپ کو ایک دو تین رشتوں کے علاوہ جو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے گھروں میں آنے والے شریک حیات جو ہیں باہر کی زیادہ ہیں، خاندان سے باہر کی زیادہ دکھائی دے رہے ہیں۔ مکمل طور پر اگر دیکھیں گے تو اس میں یہی چیز دکھائی دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عملی کسی کے عمل کو دیکھا جائے تو عمل سے اگر رجحان کو تلاش کیا جائے تو رجحان یہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل اپنے سے رکھ کر کے دوسرے جگہوں سے شادیاں کی جائیں وہ بہتر، اس لیے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، مگر منع نہیں کیا اس چیز کو۔ رہا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، تو یہ بھی ایک رخ بہرحال دیکھے گا کہ واقعی جن کے ہاں اصلاً ایسا پایا ہی نہیں جاتا ہے تو کیا اس طرح کے نتائج ان کی اولاد میں، ان کی نسل میں پائے جاتے ہیں، نہیں پائے تو آدمی بات کرے گا، ہوتا نسبت کے اعتبار سے دیکھے ان کے ہاں کم ہے، ان کے ہاں زیادہ ہے۔ اول تو اگر خالی باہر کرنے کی بنیاد پر یہ اثرات مرتب ہی نہیں ہوں گے، یہ یقینی طور سے کر دیا جائے تو پھر دوسروں میں بھی دکھائی دیتا ہے، تو اس طرح کی چیز دکھائی
بہت
دیتی ہے۔
بہت شکریہ مولانا صاحب، تشنگی رہ گئی، بہت کوشچنز تھے لیکن ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ ثنا آپ سے معذرت کے ساتھ بہت شکریہ ادا کروں گا کہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے سوالات کریں گے۔ مولانا صاحب ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ شامل گفتگو رہنے کا۔ خواتین و حضرات، آپ نے مہمانوں کی گفتگو سنی، اور وقت نہیں ہے کہ میں کنکلوژن دوں، امید ہے آپ کو یہ دونوں مسائل، خاص طور پہ جو مغربی ممالک میں رہنے والے مسلمان ہیں ان کے نقطہ نظر سے سمجھنے میں کچھ مدد ملی ہوگی۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔